ஓம் சாந்தி. கல் சபி அபு தர்ஷன் கிலே கே தே ஜின்கோ பகுத் மஜா ஆயா ஹாத் கடா கரே. தேங்க்யூ. ஜின்கோ நிஜ ஆனந்த கா அனுபவ ஹுவா வோ ஹாத் கடா கரே. தோனோ கேசே ஹோ சக்தே ஹை, யா தோ மஜா ஆயா யா தோ ஆனந்த கா அனுபவ ஹுவா, தோனோ கே லியே ஹாத் நீ கடா கர சக்தே. பாபா கே பச்சே ஜஹா பி ஜாத்தே ஹே, ஜிஸ் காரண சே பி ஜாத்தே ஹே, நிஜ ஆனந்த கா அனுபவ கர்கே லோட்டே ஹே, பரபூர் ஹோகர் ஆதே ஹே, ஹரேக் பாத் கோர் உஸ்கே குண கோ அச்சாயி கோ அப்னே அந்தர் சமா லேதே ஹே. தோ யே அட்டென்ஷன் ஹமாரா சதா ரஹே, கி ஹம் கஹீ பி ஹே, கோய் பி காரண சே கயே ஹே, ஹமே ஆனந்த ஆனா சாயியே. மஜா தோ கர்த்தே ஹி ரஹதே ஹே துனியா மே, ஆனந்த கிஸ்கோ கஹா ஜாதா ஹே, வோ அனுபவ லேனா ஹே. யே அமூல்ய சமய இஸ் அனுபவ கே லியே ஹே, கேவல் மெடிடேஷன் மே பைதே ஓர் ஆனந்த கா அனுபவ ஹுவா யே நஹி, ஹர் கர்ம மே ஹர் ஸ்தான் பர். ஆஜ கா ஜோ விஷய ஹே, ஜெசே பஹன் நே சுனாயா, கால சக்கர யா சமய கா சக்கர யா உசே கஹியே ஸ்ருஷ்டி கா சக்கர, வர்ல்ட் டிராமா. கை பார் இஸ்கே பிரதி பிரஷ்ன உட்டே ஹோங்கே நா ஹம் சப்கே, கப் ஷுரு ஹுவா, கிஸ்னே ஷுரு கியா, கிஸ்னே ரச்சா யே சப், இஸ்கே பீச்சே கோன் ஹே கண்ட்ரோலர், கோய் குச் கேதா ஹே, கோய் குச், கப் பூரா ஹோகா யே சப், யே துக் யே சுக் சப் க்யா ஹே, யே அசத்ய க்யா ஹே, சத்ய வாஸ்தவ மே க்யா ஹே, तो ये सब हमारे अंदर आता ही होगा. तो आज हम इसके बारे में और थोड़ा स्पष्ट रीति से जानने की कोशिश करेंगे. इस ड्रामा के पीछे मुख्य पांच बातें हैं जिसके बगैर ड्रामा हो ही नहीं सकता. सबसे पहले है परमपिता परमात्मा हमारे सबसे मीठे शिव बाबा. ईश्वर के बिना ये नाटक हो ही नहीं सकता. इसीलिए कई लोग समझते हैं कि इस ड्रामा को रचने वाले स्वयं ईश्वर ही होंगे. अब सबसे पहली बात स्पष्ट कर लीजिए कि इस विशाल ड्रामा के रचयिता परमात्मा नहीं है, पर परमात्मा इस ड्रामा के नॉलेजफुल है. और इसीलिए जब भी हमारा परमात्मा से मिलन होता है इस सृष्टि पर, तब हमें वो इस ज्ञान, इस ड्रामा के ज्ञान का या इस ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान देते हैं. क्लियर है ये बात? दूसरा है, हम सब आत्माएं, सब सर्व जीवात्माएं, केवल मनुष्य आत्माएं नहीं, सब जीव आत्माएं, जिनके बगैर भी ये ड्रामा हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि हम सब इस ड्रामा के एक्टर्स हैं. है एक्टर्स? सारा दिन क्या करते हैं? रोल बजाते रहते हैं ना, केवल एक ही रोल नहीं होता है, सारे दिन में हम विभिन्न प्रकार के रोल बजाते हैं, और इसीलिए हम सभी आत्माओं को ये शरीर रूपी माध्यम प्राप्त होता है। ये एक्टर का, एक्टर की वेशभूषा है, कॉस्ट्यूम है, जिसको धारण करके ही हम आत्मा अपनी एक्ट कर सकते हैं। तो हमारे बिना भी ड्रामा नहीं है। तीसरी बात, प्रकृति के पांच तत्व, जमीन, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन पांचों के बिना ये ड्रामा नहीं है। हम भी क्या करते अगर प्रकृति नहीं होती? सब कुछ तो हम आत्माओं को वहीं से यहां प्राप्त होता है ना, प्रकृति से। ये शरीर भी कहां से बनता है? पांच तत्व से बनता है। तो इसलिए प्रकृति का भी होना अनिवार्य है, उसके बिना ड्रामा नहीं है। चौथी बात, कर्म। कर्म के बिना ड्रामा नहीं है। कई ड्रामा को नसीब का नाम दे देते हैं और कहते हैं सब अपने अपने नसीब से चल रहे हैं, या भाग्य का नाम दे देते हैं और कहते हर एक अपने भाग्य से चल रहा है, लेकिन संपूर्ण रीति से वो सत्य बात नहीं है। कर्म के बिना भाग्य ही नहीं है, कर्म के बिना नसीब भी नहीं है, और इसीलिए कर्म भी सबसे महत्वपूर्ण है। क्या हमें एक सेकंड भी ऐसा मिलता है जब हम कोई कर्म नहीं करते हैं इस ड्रामा में? नहीं। सोते हैं तो भी कर्म है। सन्यासी के हम तो कर्म सन्यास करते हैं, पर वह जहां भी जाते हैं वहां उनका कर्म कंटिन्यू होता है। कहीं भी कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि चींटी देख लो, आपको पता है चींटी की एक सबसे महत्वपूर्ण बात पता है? चींटी जी, चींटी कभी भी सोती नहीं है। एन एंट नेवर स्लीप्स। एक एक सेकंड वो कर्म में जुड़ी होती है, और हमसे वो कितनी छोटी है, तो हम कैसे कर्म के बगैर रह सकते हैं? तो वो भी ड्रामा का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। और पांचवा है समय। ड्रामा माना समय, काल। माना ड्रामा कभी भी रुकता नहीं है, ड्रामा भी सदैव चलता रहता है, अनादि काल से चलता है, ठीक है? अनादि काल से। साइंस वाले भी आपको कहेंगे कि ये तो करोड़ों करोड़ों सालों से ये पृथ्वी चली आ रही है। वो तो पृथ्वी की बात करेंगे, ग्रहों की बात करेंगे, कहते करोड़ों साल से। हम कहते हैं अनादि काल से। अनादि मना, अनादि मना अनादि, जिसका ना आदि है ना अंत है। इतने समय से ड्रामा चला आ रहा है और चलता रहेगा। तो हमने कौन सी पांच बातें बताई? पहली कौन सी बात? परमात्मा। दूसरी बात, हम आत्माएं। तीसरी बात, प्रकृति के पांच तत्व। चौथी बात, कर्म। और पांचवी बात, समय। ये पांचों का मिलजुल करके ये ड्रामा बना हुआ है। परमात्मा जब हमें ज्ञान देते हैं इस काल चक्र के बारे में, तो हमें पहले ये समझाते हैं कि प्रकृति में दो नियम हम देखते हैं। पहला नियम है कि जो भी चलता है ड्रामा में वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। ठीक बात है? हाथ खड़ा करें जो समझते, कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, हमेशा परिवर्तन होता ही रहता है, हम सब देखते ही रहते हैं परिवर्तन। ये इस अनादि ड्रामा का एक मुख्य भाग है या विशेषता है। तो ये बात हमारी बुद्धि में रहनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम कोई बात के लिए ऐसी धारणा कर लेते हैं, अब तो ये मेरा है। कितना इजी है ना कहना, अब तो ये मेरा है, अब तो मैं बस गया, अभी तो मेरा जीवन बन गया, ऐसे शब्द यूज करते हैं ना, तब हमारी धारणा में क्या आता है कि बस अब ये ऐसा कि ऐसा रहेगा, बिल्कुल बदलने वाला नहीं है। गलत, सब कुछ परिवर्तनशील है। दूसरा नियम प्रकृति का, परिवर्तनशील है लेकिन हर एक परिवर्तन का एक चक्र है। चलो शुरू करते हैं ग्रहों से, जो हमारे से सबसे बाहर की चीज है। माना हम मैक्रो लेवल पर देखें तो ग्रहों का भी चक्र है। समझते हैं सभी? तभी तो साइंटिस्ट कहते हैं ना, ये 900 साल पहले हुआ था, फिर से हुआ है। ये हमेशा 800 साल में एक बार होता है, हमने सुना है ना ऐसा। सभी ग्रहों का, सूर्य का भी पृथ्वी के इर्द गिर्द, सॉरी, पृथ्वी का सूर्य के इर्द गिर्द घूमना, क्या ये भी एक चक्र नहीं है? चक्र है। और उसी अनुसार हमने क्या किया है, उस चक्र के अनुसार हमने अपनी दिनचर्या बनाई है। बहुत समय के बाद हमने घड़ी भी बनाई। पहले तो सूर्य के अनुसार ही दिनचर्या चलती थी मानव की, और एक्यूरेट चलती थी क्योंकि उस चक्र में एक्यूरेसी है और समझ जाते थे। फिर हमने कहा अभी सुबह है, अभी दोपहर है, अभी शाम है, अभी रात है। देखो वो भी परिवर्तनशील, लेकिन उसका भी चक्र, रात के बाद सुबह। कभी उसने मना किया है? कभी ऐसे हुआ है कि रात की रात ही रह गई हो? नहीं। अच्छा, अब आते हैं पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के ऊपर हम देखते हैं कि हम सभी का जन्म होता है, तब हमारा स्वरूप कितना होता है, एकदम छोटा सा। फिर धीरे धीरे शरीर बढ़ता जाता है और हम कहते हैं अभी बाल्य काल से हम युवा काल में आए, फिर युवा से प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था से वानप्रस्थ अवस्था। तो ये शरीर जो हम प्रकृति से लेते हैं वो भी परिवर्तनशील है। फिर वानप्रस्थ अवस्था के बाद, वानप्रस्थ अवस्था के बाद क्या होता है, हम उसे मृत्यु शब्द कहते हैं ना, पर वास्तव में ड्रामा मृत्यु शब्द नहीं कहता है। ड्रामा कहता है अब ये चोले को बदलो, ये पुराना हो गया है, अब काम नहीं करेगा, अब नया चोला लो। मृत्यु शब्द तो हम यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि हमको लगता है अभी अंत है, अंत होता ही नहीं, क्योंकि ड्रामा कभी रुकता नहीं है। उस अनुसार हम देखते हैं कि आप सागर के पास जाओ, सागर क्या काम करता है, सूर्य की गर्मी से उसमें से भाप निकल के ऊपर जाती है, फिर भाप से क्या बनता है, बादल। बादल कहाँ जाता है, पर्वत पे, पर्वत पर बरसता है, बरस के नीचे उतर के क्या बन जाता है, नदी, और नदी बहती हुई फिर कहां जाती है अंत में, सागर पे। परिवर्तन होते 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 वो एक चक्र पूरा करती, क्या वो चक्र वहां पूरा हो जाता है? नहीं, फिर वो भाप बनता है। बीज होते हैं, किसी ने बीज बनाए हैं क्या? कोई बीज नहीं बनाता है, क्योंकि बीज मिल जाते हैं, बीज से फिर पौधा, पौधे से फिर धीरे धीरे झाड़, झाड़ फिर फल देता है, फूल देता है, और लास्ट में क्या होता है, हर एक झाड़ का अपना अपना समय होता है, फिर क्या होता है, झाड़ एकदम जड़जड़ीभूत हो जाता है, फल देने भी लायक नहीं बनता है, लेकिन तब तक वो क्या कर लेता है, वो अपने बीज दे देता है, और उन बीजों से फिर से नया झाड़ उगने लगता है, और फिर वो पुराना झाड़ जो है खत्म हो जाता है, अर्थात अपने जैसे ही मिट्टी में मिल जाता है, पर तब तक फिर से रचना हो जाती है उसी झाड़ के बीजों से। अर्थात परिवर्तन में हर एक चीज में चक्र है। हम भी रोज सवेरे उठकर सबसे पहला काम क्या करते हैं, यही है ना, पता ही है, अभी इतने निज संस्कार बन गए हैं कि सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो हम भी इस चक्र में, एक दिनचर्या के चक्र में रहते हैं ना। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर, अभी मैक्रो से धीरे धीरे हम अंदर की दुनिया में जाते हैं, तो शरीर के कार्य में भी क्या होता है, श्वास के भी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एक चक्र के रूप से चलता रहता है ना। हम लेते हैं, बाहर निकलता है, फिर लेते हैं, ऐसे ही डाइजेशन सिस्टम, जो शरीर में हम भोजन डालते हैं उसको कैसे सब पाचन होता है और फिर वापस निकलता है, फिर वो एनर्जी बनता है, फिर वो भोजन के रूप में हम अंदर लेते हैं, कितना परिवर्तन, लेकिन वो चक्र भी चालू ही रहता है। अच्छा, उसके बाद है ब्लड सर्कुलेशन, नाम ही सर्कुलेशन है, हमारा रक्त भी ऐसे ही घूमता रहता है, पूरे शरीर में पूरे अंगों तक वो लेता है, उसका भी परिवर्तन होता रहता है। हमारे जो सेल्स है, जो कण है, वो हर 7 साल में पूरे कण बदल जाते हैं, नए हो जाते हैं, उसका भी चक्र है। अब हम आते हैं आत्मा पर, ठीक है। आत्मा में भी तीन बातें कौन सी है, तीन सूक्ष्म इंद्रियां कौन सी है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है, फिर हम कर्म में आते हैं, और कर्म की जो रिकॉर्डिंग हमारे अंदर होती है उसको कहा जाता है संस्कार। वो संस्कार, हम एक ही प्रकार के कर्म करते रहते हैं, वो संस्कार बढ़ता जाता है। एक समय आता है जब हम संस्कार से ही नेचुरल कर्म करने लगते हैं, जैसे सुबह ब्रश करना या स्नान करना, ये हमारा संस्कार बन चुका है, तो संस्कार से ही हम वापस कर्म करने लगते, वो भी एक चक्र हो जाता है, उसका भी रोज चक्र चलता है। एक समय आता है जब हमको लगता है कि अब इस चक्र को मुझे तोड़ना है, कब, जब हमें बहुत दुख की अनुभूति होती है, जब शरीर में भी बहुत रोग हो जाते हैं, शरीर सहन नहीं कर पाता है, या तो बहुत जिंदगी में दुख आ जाता है हमारे सहन शक्ति से बाहर, तब हम क्या कहते हैं, ये सब कब खत्म होगा, अर्थात हमें उस चक्र को तोड़ने का संकल्प आने लगता है, तब तक हम उस चक्र में ही होते हैं। तो ये है हमारे दो नियम। अगर हमारे बाहर शरीर के अंदर आत्मा के भीतर भी चक्र चल रहा है, तो सोचिए आत्मा का भी खुद का एक चक्र होगा। क्या हमें आत्मा के चक्र के ज्ञान है, क्या हम उसके बारे में कुछ समझते हैं? आत्मा का चक्र कौन सा होगा, और हम हरेक आत्मा का चक्र इस सृष्टि पर है ही है, पर इसका ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। और ये जो अनादि काल से ड्रामा चल रहा है, वो भी जो एक चक्र के रूप में है, उस चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी कोई मनुष्य मात्र में नहीं है। तो किस में होगा, किस में होगा, किस में होना चाहिए? जो ड्रामा का नॉलेजफुल है, जो ड्रामा के एक एक सेकंड को देख सकता है, जिसे सच्ची अर्थ में त्रिकाल ज्ञानी, त्रिकाल दर्शी, त्रिलोकी नाथ कहा जाता है, वो टाइटल किसका है? परमात्मा का। और वो क्यों देख सकते हैं एक एक सेकंड? क्योंकि वो सदा के लिए परम धाम निवासी है, और हम सब एक्टर्स होने के कारण हम सब इस ड्रामा में आते हैं। आपको प्रश्न उठेगा, हम क्यों आते हैं भला? क्योंकि आत्मा के अंदर कर्म करने का नेचुरल संस्कार है। नेचुरल, जैसे नेचर में रॉ मटेरियल होता है, भले हम कोई भी चीज बना दे, लेकिन जिस चीजों से वो बनता है वो तो ऑलरेडी अवेलेबल होता है, हम उसको बनाते नहीं है, बनाते? जैसे लोखंड है, उसको बनाया नहीं जाता है, वो है ही है। सोना को बनाते हैं? नहीं, वो है ही है। उसमें से फिर हम कुछ भी बना ले, वो मनुष्य की रचना कहलाएगी। सोना मनुष्य की रचना नहीं है, गोल्ड वो प्रकृति में है ही है। ऐसे ही परमात्मा में इस ड्रामा की नॉलेज है ही है, और हम आत्माओं में कर्म करने का संस्कार है ही है, लेकिन वो परम धाम में नहीं चल सकता है। परम धाम है साइलेंस का धाम, जहां पर शरीर नहीं है, जहां पर कोई कर्म नहीं है। इसीलिए जब हम इस पृथ्वी पर आते हैं तब हमारा एक्ट आरंभ होता है, तब हम कर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए यही मुख्य कारण है कि हम अपने अपने समय पर इस पृथ्वी पर इस ड्रामा में अपना पार्ट बजाने के लिए आते जरूर है। एक भी मनुष्य आत्मा नहीं है ऐसी कि जो परम धाम में ही सदा के लिए रह जाए और यहां एक जन्म के लिए भी न आए, ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं। परमात्मा ने हमें ये राज, बहुत सारे राज ड्रामा के बताए हैं, तभी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो हम कैसे आते हैं, किस समय पर आते हैं परम धाम से, वो हम हरेक को अपना डिसीशन लेना होगा। ड्रामा को समझने से हमें खुद की सेल्फ रियलाइजेशन इस काल चक्र के समझ से करनी होगी। कोई प्रूफ नहीं देगा आपको, आपको अपने आप को प्रूफ देना पड़ेगा, हाँ मैं आत्मा इस समय से आना शुरू की होंगी। कोई ड्रामा के एकदम आदि काल से आया होगा परम धाम से, कोई आदि काल के थोड़े समय के बाद, कोई मध्य काल से आया होगा, कोई अंत के थोड़े समय पहले आया होगा, कोई बिल्कुल अंत में आया होगा, लेकिन हरेक को अपनी सेल्फ रियलाइजेशन खुद करनी होगी। और इसमें एक बहुत पक्का नियम है ड्रामा का, वो है कि आप भले कभी भी आओ ड्रामा में, कभी भी आओ परमधाम से, कोई भी काल में, अंत तक आपको इसी ड्रामा में रहना है। जैसे वो छोटे छोटे ड्रामा किसने बनाए हैं दुनिया में? हमने ही बनाए हैं ना। उसमें आपने देखा होगा कि पहले कुछ एक्टर्स आते हैं, धीरे धीरे एक्टर्स की वृद्धि होती है और ड्रामा के एंड तक सारे एक्टर्स ड्रामा की स्टेज पर आकर खड़े हो जाते हैं। ठीक बात है। ऐसे ही आज आप देखिए, करोड़ों करोड़ों है हम, चलो अपनी शक्ति से हमने जो संख्या की गिनती की होगी वो सपोज ले लेते हैं कि हम आज 7 करोड़ से थोड़े अधिक है, सॉरी 7 अबज से थोड़े अधिक है, ठीक है। पर आज ये संख्या भी हमें दुख दे रही है ना, ये संख्या भी दुख देने का एक कारण बन गई है ना। हम कहते अगर थोड़े कम होते तो शायद इतना दुख नहीं होता। जैसे हम कभी मुंबई की लोकल ट्रेन्स देखते हैं ना, तो हमको लगता है कितनी ट्रेन्स बनाते हैं लोग, नहीं नहीं फिर भी उतना ही रश, श्वास लेने की भी जगह नहीं होती है बॉम्बे के लोकल ट्रेन में। तो हमको सचमुच लगता है कि अगर थोड़े कम होते, हर एक को बैठने की जगह मिल जाती तो कितना अच्छा होता। तो ये जो संख्या बढ़ गई है ये भी एक दुख का कारण बनी है। इसलिए नेचुरली सृष्टि के चक्र के आदि काल में संख्या कम होगी ना। कौन आएंगे वो तो हमें खुद समझना है सृष्टि के आदि काल में। परम धाम से ही हरेक को आना है। परम धाम ऐसा धाम है, ऐसा वातावरण है कि जहां कोई भी प्रकार की अपवित्रता हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। जितना शांति का धाम है उतना पवित्र धाम है। कोई पाप, कोई विकर्म, कोई दुख, कोई भी इस प्रकार का या अपवित्रता हो नहीं सकती। इसलिए जब भी आत्माएं परम धाम से सृष्टि चक्र पर आएंगी तो आत्मा की स्टेज क्या होगी? अपवित्र या पवित्र? वेरी गुड, पवित्र होगी। लेकिन वो जिस काल में आएगी उस लेवल की पवित्रता होगी, क्योंकि समय भी रुकता नहीं है ना किसी के लिए। समय भी तो टिक 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 करते चलता रहता है, ठीक बात है ना। घड़ी रुक जाती है तो हम क्या करते हैं? अच्छा लगता है घड़ी रुकती है तो तुरंत उसको नया सेल दे देते हैं और घड़ी को चालू कर देते हैं। हमें वो टिक टिक ही अच्छा लगता है, तो नेचुरली वो टिक टिक समय की चलती है। पर जो आदि काल में सपोज पहला जन्म ले लो, उसमें कौन सी आत्माएं आएंगी? सबसे पवित्र की ऊंची स्टेज वाली आएंगी, राइट? और जैसे वो आत्मा आएंगी उसे प्रकृति कैसी मिलेगी? उसके जैसी मिलेगी, जैसे कहते हैं ना जैसा सोना वैसा जेवर, ठीक बात है। ऐसे ही आत्मा की स्टेज क्या क्या कहेंगे, कैसे डिस्क्राइब, कैसे वर्णन करेंगे आत्मा को? आत्मा की स्थिति सुवर्ण होंगी, गोल्डन एजेड स्टेज, सत्य की पूर्ण पराकाष्ठा के ऊपर आत्मा होंगी। परमधाम से उस अवस्था में आएंगी तो उसे प्रकृति भी कैसी मिलेगी? बिल्कुल ऐसी, आत्मा जैसी, पवित्र, पांचों ही तत्व 100% सुखदाई। जैसे आजकल हम क्या देखते हैं, हर जगह क्लाइमेट बदल रही है, समय अनुसार नहीं, बिना मौसम के बदल रही है। तो इस प्रकृति को आप पवित्र कहेंगे? हम जिस गंगा में स्नान करने जाते हैं अपने को पावन बनाने के लिए, आज वो गंगा का पानी कैसा लगता है आपको? शुद्ध है? कितना मैला हो गया है? तो उसकी स्टेज भी बदल गई। गंगा आदि काल में भी होगी पर उस समय उसका जल कैसा होगा? खुशबूदार, एकदम स्वच्छ, बिल्कुल गुणकारी, वही गंगा पूरे चक्र में बहती रहेगी आदिकाल से अंत तक, पर उसके स्वरूप में भी अंतर होगा। और हम आत्माएं जब आदिकाल में आते हैं और हमारी अवस्था सत्य है या गोल्डन एजेड है, इसलिए उस युग को हम कैसे वर्णन करेंगे? सत्ययुग, सुवर्ण काल, गोल्डन एज, कोई लेबल नहीं लगा होगा, लेकिन वो वर्णित ऐसा होता है, सुवर्ण काल। उसमें आत्मा, ये शरीर, प्रकृति सब पावन होते हैं, और इसीलिए तन जो है वो 100% निरोगी होता है, हेल्दी होता है, उसमें कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई डिफॉर्मिटी नहीं, कोई अपंगता नहीं, और हरेक की सुंदरता 100% नेचुरल ब्यूटीफुल होंगी। जैसे अभी हम सबकी अलग अलग है ना, वैसा वहां नहीं होगा, हरेक को वो सुंदरता प्राप्त होगी, हरेक को। तन से कोई भी प्रकार का दुख नहीं मिलेगा। ऐसे ही मन, जब तन इतना निरोगी है तो मन कैसा होगा? मन भी बिल्कुल टेंशन लेस। कई पूछते हैं स्ट्रेस थोड़ा तो होता ही है ना, पर एक काल था, समय था, जब स्ट्रेस किसको कहा जाता है? उसकी ही अविद्या थी। शांत, पवित्र, शुद्ध। अशांति किसको कहा जाता है? पता ही नहीं। ऐसा मन जिसकी हम आज इच्छा करते हैं, मंदिरों में जाके यही मांगते हैं कि मुझे मन की शांति मिले, मेरा परिवार सुखी रहे, मांग मांग के थक जाते हैं आज, लेकिन सुवर्ण काल में नेचुरल मांगना नहीं, वहां मांगने का संस्कार ही नहीं होगा। हर एक आत्मा भरपूर होंगी तो कहां कौन मांगेगा, किससे मांगेगा, जरूरत ही नहीं है, और अभिमान भी नहीं। आत्मा की इतनी सुवर्ण अवस्था है कि उसमें अभिमान का रोग तो हो ही नहीं सकता। आपको पता है ना, सबसे बड़ा रोग आत्मा का आज कौन सा है? अभिमान, ईगो, अहंकार, वो तो होगा ही नहीं वहां, नेचुरल। और अगर मन और तन दोनों निरोगी है तो उस आत्मा को धन की कभी कोई कमी नहीं हो सकती। यहां क्या सोचते हैं? अरे हमको संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि इतना धन सबको मिले ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए जितना हम संतुष्ट रहेंगे ना उतना अच्छा है। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां अपरम अपार धन है, अक्कीचार धन है, कोई कमी नहीं किसके लिए, इसलिए मांगते नहीं है, इसलिए असंतुष्ट नहीं है, संतुष्ट है सभी। सब कुछ होगा, जो हम आज समाज में रहते मांग रहे हैं ना, वो सब कुछ आदिकाल में होगा। हमने क्या सुना था कि अरे हमारे पास कुछ नहीं था, हम तो वो टापुओं पर रहते थे, जंगलों में रहते थे, कपड़े भी नहीं थे, सब पत्थरों से बनाते थे। पर ये आदिकाल नहीं है, परमात्मा ने हमें ये इतिहास सुनाया कि ये जो आप कह रहे हो वो तो मध्यकाल की कहानी है, उसके पहले की कहानी किसके पास भी नहीं है। इसीलिए परमात्मा हमें आकर फिर याद दिलाते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड। सत्युग ये प्री हिस्टोरिकल पीरियड है, जिसकी लिखत में शायद ही कुछ शब्दों में हम पा सकते हैं, पर पूर्ण अनुभव हम बिल्कुल भूल चुके हैं। सब कुछ याद रहता तो मजा नहीं आता। हमें आनंद इसलिए आता है ड्रामा में, क्योंकि कई बातें हम भूल भी जाते हैं और कई चीजें याद रहती है। आज कुछ बातें जो हमें भूलनी चाहिए वो नहीं भूलते हैं, इसलिए हम दुखी है। पर ये हम बिल्कुल ही भूल चुके हैं। फिर भी हम गाते रहते हैं उसकी महिमा। कल आपने गीत सुना ना, भारत फिर से भरपूर बनेगा। ऐसे ही पहले भी फिल्म्स के लिए भी और भारत के लिए भी कौन सा गीत बना है, भारत कैसा है, सोने की चिड़िया, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। कोई चिड़िया सोने की थोड़ी होती है, पर इतना धन था, इतनी भरपूरता थी, ऐसा हमारा भारत था। और सचमुच परमात्मा ने हमें बताया कि ये जो आदि काल है इसमें अलग अलग खंड नहीं थे, खंड भी पूरा एक था, जिसको कहा जाता है महाभारत। हम सब किसके वासी थे, महाभारत के वासी थे। इंडिया भी शब्द नहीं था, हिंदुस्तान भी नहीं था, भारत, महाभारत। इसलिए आखिर जो युद्ध होगी उसको भी गीता में क्या नाम दिया है, महाभारत। इसीलिए नाम दिया है क्योंकि शुरुआत में जो खंड है जिसमें हम आते हैं, जन्म लेते हैं, वो महाभारत है। एक खंड, एक धर्म, एक भाषा, सब प्रकार की एकता है, फिर भी खुशी है, फिर भी उस समय का हमें बहुत बहुत जैसे एक आनंद है। पर समय तो बीतता है ना, और आत्मा की क्रिया क्या है, जैसे हम कर्म करते हैं तो आत्मा की शक्ति का उपयोग होता है, होता है कि नहीं होता है। हम सुबह कैसे होते हैं जब उठते हैं, और जब शाम को घर लौटते हैं या सारे घर के काम पूरे होते हैं तब हमारी अवस्था क्या होती है, फर्क होता है ना। क्यों? क्योंकि सारे दिन में हम अपनी एनर्जी को यूज करते हैं। ऐसे ही आदि काल में भी जब हम आते हैं, जो भी आते हैं उनकी भी एनर्जी तो यूज होगी, पर जब हम नेगेटिव सोचते हैं या व्यर्थ सोचते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत स्पीड से कम होती है। और जब हम प्योर पॉजिटिव ऐसे संकल्प करते हैं तो हमारी एनर्जी की लेवल बहुत धीमी रीति से, धीमी गति से कम होती है। इसलिए हमें एहसास नहीं होता है कि हमारी एनर्जी लेवल कम हो रही है। पर पहले जन्म से ही धीरे धीरे आत्मा का बल यूज होता है। यूज ही होगा, फिर से बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, फिर से बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, केवल यूज करने का तरीका है कर्म के द्वारा। अब जैसे थोड़ा समय बीतता है, अर्थात यहां पर परमात्मा ने बताया, बाबा ने 1250 वर्ष तक वो सतयुग का काल चलेगा और आत्माएं ऐड होती जाएगी। आपको आगे के लेसन्स में जो आप सेंटर पर जाकर कर सकते हैं उसमें बताया जाएगा कि एक सतयुग के काल में कितने जन्म होते हैं, कितनी आत्माएं आती है, वो बाद में आप दूसरे लेसन्स में ले सकते हैं। अभी हम इतना तो समझे कि शुरुआत से लेकर 1250 वर्ष तक जो पहले जन्म में आत्माएं आएंगी उनके द्वारा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे जितने भी जन्म सतयुग के हैं, जन्म भी तो कम से कम ही होंगे, तो आयु भी सबकी बड़ी होगी, तो वह अनुभव सुख का करेंगे, भले उनकी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है, वहां दुख नहीं होता है, वहां कोई विकार नहीं होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, फिर भी सृष्टि चलती है, समाज चलता है, हर चीज होती है जो समाज में जरूरी है, पर सुखदाई, प्राणी भी पक्षी भी सुखदाई, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है सतयुग में, सब कुछ आपे ही सहज रीति से प्राप्त होता है। तो कैसे मनुष्यों को, प्राणी मात्र को कैसे सुख नहीं होगा, होना ही है। पर जब 1250 वर्ष का समय पूरा होता है, घड़ी आगे बढ़ती है सृष्टि के समय में, तो तब दूसरा युग आरंभ होता है जिसको कहा जाता है त्रेता युग, सिल्वर एज। त्रेता युग माना, त्रेता माना त्रुटि, त्रुटि माना जो संपूर्णता थी सतयुग की, परफेक्शन, उसमें त्रुटि ब्रेक आ जाती है। तो हमें नहीं रियलाइज होता है, त्रेता में आने वाली आत्माओं को भी नहीं रियलाइज होता है, क्योंकि बाहर का वातावरण फिर भी स्वर्ग ही है। स्वर्ग मरने के बाद नहीं मिलता है या ऊपर नीचे नहीं होता है, इसी सृष्टि में एक समय स्वर्ग होता है और एक समय नरक का अनुभव होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो आज के समय में सुखी है उनका स्वर्ग है और जो दुखी है वो नरक में है, नहीं। अगर नरक है तो सब नरक में है, अगर स्वर्ग है तो सब स्वर्ग में है। ये ऐसी पार्शियलिटी कैसे हो सकती है? तो त्रेता का भी 1250 वर्ष एक स्वर्गीय अनुभूति में ही पास होती है। आत्माएं ज्वाइन होती रहती है त्रेता के अंत तक, अनेक आत्माएं अपना पार्ट बजाने आ जाती है, लेकिन उतनी भी नहीं है जो त्रेता में किसी को दुख का अनुभव हो, वहां भी विकार बिल्कुल नहीं है। तो हमें कितना समय मिलता है सर्व सुख पाने के लिए? 2500 वर्ष। कितना मिलता है? 2500 वर्ष। दुख का नाम नहीं, क्योंकि अभी तक तो हम फिलोसोफर्स से यही सुनते आए कि जहां सुख है वहां दुख है, जहां दुख है वहां सुख है। हमें ये तो किसी ने बताया ही नहीं कि एक समय था जो केवल सुख था, और कितना समय? 2500 वर्ष। फिर से अपनी स्मृति का स्विच ऑन कर दे, योग करेंगे, मेडिटेशन, उसमें ये बात सामने लाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी आत्मा के अंदर जो स्मृति है वो कहीं नहीं गई है, अंदर है, वो उभर के खुल के आएगी और आपको खुद को रियलाइज होगा। आप ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सामने देख रहे हैं। सबको साक्षात्कार हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। अब हमारे जो फाउंडर ब्रह्मा बाबा और मम्मा, ब्रह्मा बाबा को शुरुआत में बहुत सारे साक्षात्कार हुए, सतयुग का भी हुआ, हर एक चीज का हुआ, मम्मा को नहीं हुआ है, पर मम्मा ने भी रियलाइज किया। तो दोनों रीति से हम रियलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मन और बुद्धि में वो ताकत है। हमने देखा ना कृतिबेन के कार्यक्रम में, मन में कितनी ताकत होती है संकल्पों में। कल रात को सूरज भाई के क्लास में, एक संकल्प करो दृढ़ता से वो जरूर पूर्ण होता है, इतनी ताकत है अपने अंदर। तो 2500 वर्ष का संपूर्ण सुख, तैयार है हम उसके लिए? तैयार है? कौन तैयार है, हाथ खड़ा करिए। कौन सोचना चाहते हैं अपने बारे में, हाथ खड़ा करें। जो सोचना चाहते हैं, मैं सोचूंगा, बहुत अच्छा, क्योंकि हम सब नंबरवार है ना, और हम सब अलग अलग बुद्धि, अभी हमारे पास अलग अलग बुद्धि की क्वालिटी है। जो सोचना चाह रहे हैं उनकी भी बुद्धि की क्वालिटी कम नहीं है, पर अलग अलग रीत होती है हम सब की। अच्छा, अब आगे बढ़े। जैसे हम इस सृष्टि के समय के आधे समय तक, माना 2500 वर्ष के अंत तक आते हैं, तो जो आत्माएं सतयुग से चली आ रही है उस आत्मा की एनर्जी 50% तक कम हो जाती है, 50% कम हो जाती है। अब जब इतने अंश तक कम होती है एनर्जी आत्मा के अंदर, ये ड्रामा का ऐसा बना हुआ खेल है, तो क्या होता है उसकी जो उसके अंदर आत्मा की एनर्जी जरूरी है शरीर के प्रभाव में न आने की। इसलिए कहा जाता है सत्युग और त्रेता युग में सब आत्म अभिमानी है, सोल कॉन्शियस, कोई भी बॉडी कॉन्शियस नहीं है। पर त्रेता के बाद जब एक परिवर्तन का काल आता है तब हम देह अभिमान में, बॉडी कॉन्शियस में आना आरंभ करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा को स्वाभिमानी रहने के लिए, स्वावलंबी रहने के लिए ताकत नहीं है, इसलिए वो सपोर्ट ढूंढ रही है कि मुझे कहीं मदद मिले। तो आत्मा को पहला ध्यान कहा जाता है अपने शरीर और दूसरों के शरीरों की तरफ, और उसी सेकंड उसे आकर्षण होती है। आकर्षण होते ही वो बॉडी कॉन्शियस में आ जाती है नेचुरल। और इस बॉडी कॉन्शियस में या देह अभिमान में आने से, या पहला स्टेज हम कहेंगे देह का भान, देह के भान में आने से सबसे पहला विकार कौन सा आएगा? सबसे पहला विकार कौन सा जन्मेगा अंदर? अभिमान तो आ गया, सबसे पहला विकार है जो गीता में कहा है हमारा महाशत्रु है वो है काम। उसे फुल कहो तो कामनाएं, इच्छाएं, डिजायर्स, वो फिर शरीर के लिए भी हो सकती है या पदार्थों के लिए भी हो सकती है या व्यक्तियों के लिए हो सकती है या प्राप्तियों के लिए हो सकती है। कामनाएं महाशत्रु आत्मा की। तो काम से फिर शुरू होता है क्रोध, फिर शुरू होता है लोभ, फिर मोह, फिर अभिमान, फिर आता है भय, फिर आता है ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन, और आगे आगे बच्चे बहुत पैदा हो जाते हैं धीरे धीरे। पर तीसरा जो युग है उसे कहा जाता है द्वापर युग। पहले था गोल्डन एज, फिर सिल्वर एज, और द्वापर युग बना कॉपर एज। कॉपर जो मेटल है ना वो सिल्वर और गोल्ड के जैसा नहीं होता है, तुरंत प्रकृति का प्रभाव उस पर पड़ता है। बस वही निशानी है कि आत्मा पर भी प्रकृति का प्रभाव अभी जास्ती पड़ रहा है। पहले आत्मा का प्रभाव प्रकृति पर था, अभी प्रकृति का प्रभाव आत्मा, यही तो खेल है, यही तो खेल है हार और जीत का। पहले जीत थी, अभी हार शुरू होती है। तो द्वापर माना दो पर, माना आत्मा और शरीर का भान। आत्मा का भान ऐसे ले जाएगा तो शरीर का भान ऐसे ले जाएगा, ये दो रास्ते मिलते ही नहीं है। तो हम वहीं पर अपना डिसीशन, निर्णय ले लेते हैं मुझे कौन से रास्ते पर चलना है। तो इसीलिए ड्रामा अनुसार द्वापर युग में ऐसी आत्माएं भी आती है जो डायरेक्ट परमधाम से द्वापर युग में आती है हमें रास्ता बताने के लिए, जिनको हम कहते हैं भगवान के पैगंबर। चाहिए ना, जब हमको चूज करना है कि मुझे किस रास्ते पर जाना है, देह भान के या आत्मा भान के, तो उस समय तो आएंगे ना, भगवान भेजेंगे जरूर। और उससे क्या होता है, जो जो आए समय प्रति समय उनके द्वारा नए नए धर्मों का निर्माण हुआ। नए नए धर्म माना क्या, धारणाओं का निर्माण हुआ। जो धारणाएं कम होती गई आत्मा के अंदर, वो धारणाओं का फिर से संदेश लेकर के ये धर्म आत्माएं, धर्म पिताएं आने लगे। तो वो भले द्वापर में आए लेकिन उनका जो पहला जन्म होगा ना द्वापर में, बहुत पवित्र शुद्ध। देखो कितना सहन करते हैं वो। अगर हम आज की तारीख में हमें कोई सूली पर चढ़ा दे, वो नेल्स ठोक दे सारे अंग में, या हमें जहर कोई दे दे, अच्छा लगता है, सहन होता है? पर इन्होंने सब किया बिना कुछ बोले और ही सामने वाले को माफ किया कि भगवान ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, उन्हें माफ कर दो। तो ऐसी आत्माएं भी आती है द्वापर युग से, पर जो एक मेजर जो चक्र चलता है वो है धीरे धीरे आत्मा की कलाएं कम होती है, पवित्रता और शक्ति कम होती है। तो द्वापर युग में भी 1250 वर्ष का समय आत्माओं को मिलता है। अब परम धाम से आने की आत्माओं की जो वृद्धि होती है संसार में, उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। पहले एडिशन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है द्वापर युग से। तो द्वापर युग से ये जो पॉपुलेशन भी जो है वो बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ने लगती है, दूसरे प्राणियों की भी, दूसरे जीवों की भी संख्या बहुत बढ़ने लगती है। तो धीरे धीरे वो कारण भी दुख का होने लगता है। तीसरा कारण दुख का क्या बना, जो एक खंड था वो धीरे धीरे बटने लगा। क्यों? क्योंकि उस समय प्रकृति का एक बहुत बड़ा प्रकोप होता है। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, यहाँ पर भूकंप हुआ, यहाँ पर बाढ़ आ गई, यहाँ पर कुछ और हो गया और इतने लोग मारे गए, इतनी चीजें खत्म हो गई। ऐसे उस समय भी द्वापर की शुरुआत में एक बहुत बड़ा प्रलय, नहीं कहेंगे प्रलय शब्द किस लिए कहा जाता है कि वो सब खत्म हो जाता है, फिर उसके आगे कुछ नहीं है, प्रलय नहीं होती है, एक विशाल परिवर्तन होता है और इसमें जो है पूरा इतिहास बदल जाता है। और फिर जो है मानवों का टापुओं पर, जंगलों में भी जीवन आरंभ होता है, फिर वहां से भी और एक इतिहास शुरू होता है। लेकिन आपने देखा है कि हमारे भारतवर्ष के राजाओं का इतिहास भी चालू है और ये सतयुग से ही है। सतयुग में जब एक खंड होता है तो एक ही विश्व के महाराजा महारानी का राज्य होता है और वो द्वापर की शुरुआत तक केवल एक महाराजा एक महारानी का राज्य होता है। द्वापर से भले राजाओं की राजाई चलती है लेकिन फिर उसमें बहुत परिवर्तन आने लगते हैं, क्योंकि ये जो राजाएं हैं ये फिर भी विकारों का सहारा लेते हैं। सुना है ना हमने अंग्रेजों के टाइम, मुगलों के टाइम हिंदू राजाओं का क्या हुआ, विकारों के कारण, अनेकता के कारण, एकता नहीं थी बीच में, तो उन्होंने कैसे उनको अपने काबू में कर लिया। तो ये परिवर्तन भी आता है द्वापर के 1250 वर्ष के बाद। इन विकारों की, विकृतियों की परसेंटेज इतनी बढ़ जाती है, इतनी वृद्धि हो जाती है कि आत्मा के संयम में नहीं चलते हैं, बिल्कुल आत्मा जो है इनके वशीभूत होने लगती है। फिर भले वो आत्मा डायरेक्ट परमधाम से भी कलयुग में क्यों ना आए, ये चौथा युग है जिसको कहा जाता है कलयुग। कलयुग माना ही क्लेश का युग, जिसमें आत्मा को क्लेश का ही अनुभव होता है। भले कभी कभी हमको बहुत अच्छा विचार आता है तो भी हम कहते, बहन विचार तो आता है लेकिन इतने विघ्न आते हैं कि हम वो कर्म कर ही नहीं पाते हैं, हमको वो सुख मिलता ही नहीं है। बस यही सीन है कलयुग का। शास्त्रों में, पुराणों में इस कलयुग के अंत की निशानियां दिखाई है कि बिल्कुल परिवार परिवार के रूप से रह ही नहीं पाएगा, पूरे बट जाएंगे, सारी चीजें जो हमें नेचुरल उपलब्ध होती है वो सब ये केमिकल्स के द्वारा, प्लास्टिक में, ये सब हमें इस रीति से ही प्राप्त होगा, मतलब बिल्कुल शरीर के लिए अच्छी बातें नहीं होंगी। तो ये हम आजकल देखते ही है, ऐसे भी कहते हैं उसमें कि लड़कियां बहुत लड़कों जैसी लगेंगी और लड़के जो है वो लड़कियों जैसे लगेंगे, आज हम वो भी देखते हैं। हर एक जो साइंस दी है उसमें, वो सब हम आज कलयुग के नजारे में देख पाते हैं। और इसलिए कहा, जब ऐसा होगा तो समझना कि कलयुग का भी घोर अंत आएगा, पर उसके बाद नहीं पता क्या होगा। उसके बाद कोई बात नहीं लिखी है कि घोर कलयुग के बाद क्या होगा। हाँ, गीता में ऐसा दिया है कि पांडवों और कौरवों की महाभारत युद्ध हुई और उस युद्ध के अंत में कोई बचा ही नहीं, नहीं केवल 5 पांडव बचे। और उनको फिर लगा, इतना वैराग आया कि हम किस पर राज्य करें, जिस चीज के हमने युद्ध की वो तो कुछ रहा ही नहीं, इसलिए वो भी पहाड़ों पर जाकर के गल मरे, ऐसे दिखाते हैं। पर उसके बाद क्या, जैसे मकान कोई नया होता है, कितना अच्छा लगता है उस मकान में जाने के लिए, रहने के लिए, हम सब उमंग उत्साह में होते, कब जाए कब जाए। ऐसे आत्माएं जब परम धाम में होती है तो उनको भी इस रीति से संकल्प जरूर आएगा, मैं कब जाऊं, तब आएगा संकल्प जाने से पहले, लेकिन तब तक कोई संकल्प नहीं होगा परम धाम में। संकल्प से ही तो आत्मा आएगी ना। कई लोग पूछते, कौन भेजता है हमें, कौन भेज, कोई नहीं भेजता है। जब अपना समय होता है हमें संकल्प आता है और हम आत्मा आ जाती है, हमारे लिए गर्भ तैयार होता है माँ का, हम आ जाते हैं। कितना टाइम लगता है आत्मा को आने के लिए, 1 सेकंड भी नहीं। सबसे फास्ट रॉकेट आत्मा है, कहां से कहां पहुंच जाएगी। कृतिबेन कह रहे थे, उन्होंने अपने पूर्व जन्म का एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था, और उन्होंने क्या देखा कि वो लास्ट जन्म में इंडोनेशिया में राजा थी। अब इंडोनेशिया कहां और इंडिया कहां, उसको कितना सेकंड लगा यहां वापस जन्म लेने के लिए, 1 सेकंड से भी कम। आत्मा इतनी तीखी होती है, आत्मा जैसी तीखी कोई चीज नहीं है इस संसार में। तो हम वो है आत्मा। शरीर तो बहुत लिमिट हमें डाल देता है, पर आत्मा की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब घोर कलयुग आता है, जब सब अस्त व्यस्त हो जाता है, इवन परम धाम से उस समय आने वाली आत्माओं को भी इस अस्त व्यस्तता का ही अनुभव करना पड़ता है। भले उनको थोड़े समय के लिए बहुत सुख होगा, बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेंगे, बहुत उनको सब ऐसे ही प्राप्त होगा बिना कोई मेहनत के, लेकिन उसी जन्म में वो क्लेश का भी अनुभव कर लेंगे। एक जन्म का भी उनको पूर्ण सुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर एक आत्मा सत्युगी, सत्युगी स्टेज माना सतो प्रधान, फिर त्रेता माना सतो सामान्य, फिर द्वापर माना रजो प्रधान, और कलयुग माना तमो प्रधान। ये 4 अवस्थाओं से हरेक आत्मा को गुजरना है ही, कोई ऐसी आत्मा नहीं जो इन 4 अवस्थाओं से न गुजरे, भले कितना भी तप कर ले। फिर पुण्य चलता है, पुण्य के कारण थोड़ा सुख मिलता है, दुख तो होता ही है क्योंकि आत्मा इन 4 अवस्थाओं से गुजरती है। तो कलयुग में बताओ मेजॉरिटी सभी आत्माओं की कौन सी अवस्था होगी? तमो प्रधान। इसीलिए आज देखते हैं कि नेगेटिव करना कितना सहज है, और अगर हम कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं तो बहुत मेहनत है, क्योंकि वातावरण किस चीज का है? तमो प्रधानता का। तो हम आज कौन से वातावरण में श्वास ले रहे हैं? तमो प्रधान वातावरण में। केवल वो पॉल्यूशन नहीं है जो हमने रचा है, टोटल एनर्जी का तमो प्रधानता या पॉल्यूशन है। इसीलिए जब घोर कलयुग का समय आता है, आप घड़ी देख लो, जब समय की घड़ी में 12 बजने में 2 या 3 मिनट की कमी होगी, 12 बजने में, 12 बजने के बाद कौन सा होता है, 12 बजने के बाद क्या आता है, 13 आता है या 1 बजता है? 1 बजता है ना, 13 नहीं आता है ना, 1 ही बजता है ना। वापस 1 पे कैसे आ गए हम, कुछ तो हुआ ना। जो हम वापस एक पे आए, और 12 में भी जब 12 बजेगा दोनों कांटे कैसे होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, है ना। वो सिग्नल है ड्रामा पूरा होने का। एक चक्र सतयुग से लेकर के कलयुग का एक चक्र संपन्न होता है। 5000 वर्ष पूरे होते हैं एक चक्र के। ऐसे 5000 वर्ष के चक्र कितने हुए होंगे पहले? नो गिनती, अनादि काल से। और ऐसे 5000 वर्ष के चक्र कितने होंगे अभी? अनादि। इसीलिए चक्र को अनादि कहा जाता है। भले एक चक्र को हम समझ सकते हैं जैसे आज हमने समझा, पर चक्र कितने हैं? अनादि, कोई गिनती नहीं। ऐसे चक्र कितने हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। तो जब घोर कलयुग का समय आता है, जब चक्र पूरा होने को आता है, अब ऐसे कोई भी मनुष्य आत्मा धर्म पिता नहीं है जिसमें ये ताकत हो कि वो सारे सृष्टि को एक मार्गदर्शन दे। है किसी में ताकत जो सारी सृष्टि को मार्गदर्शन दे? है किसमें ताकत? सबने अपना अपना पार्ट बजा लिया है, अब केवल एक का पार्ट बाकी है जो अभी तक इस सृष्टि के चक्र में नहीं आए। वो कौन है? जो परम धाम में रहे और आए नहीं बिल्कुल, वो कौन है? परमात्मा। हम कहते हैं अवतरण। अवतरण अलग अलग आत्माओं का अलग अलग समय पर होता है। या तो उनको देव आत्मा कहो, या धर्म आत्मा कहो, या पुण्य आत्मा कहो, या पाप आत्मा कहो, पर परमात्मा केवल एक ही समय सारे कल्प में आते हैं। ये जो 5000 वर्ष कहा जाता है उसे एक कल्प कहते हैं, और जो सतयुग है उसको युग कहते हैं। तो कितने युग हुए? 4 युग हुए। और कल्प माना चारों ही युगों का समूह, माना एक कल्प। कलयुग के अंत में जब चारों तरफ अधर्म ही अधर्म है, फिर परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। परमात्मा का स्वरूप क्या देखा हमने? लाइट, निराकार, जिनका अपना कोई शरीर नहीं है। अब उनको आना है तो सृष्टि का नियम क्या कहता है? अगर आत्मा को आना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा, उसे अपना शरीर धारण करना पड़ेगा। पर परमात्मा के लिए ये नियम नहीं है। वो अपना शरीर नहीं ले सकते हैं, नहीं तो वो हमारी तरह ही जन्म मरण में आ जाएंगे। लेकिन वो आए हैं हमारी मुक्ति के लिए, हमें सब दुखों से छुड़ाने के लिए, हमें कलयुग से फ्री करने के लिए। इसीलिए उनका ही दिव्य अवतरण कहलाता है, और किसी का भी दिव्य अवतरण नहीं कहलाता है, केवल परमात्मा का। अब वो कैसे आएंगे? उनको आकर के हमसे मिलना है। वो कोई आकाशवाणी नहीं करनी है। परमात्मा प्रेरणा से नहीं बदल सकते हैं सब। उनको हमारे सन्मुख आना है। अब आना है तो उनको शरीर चाहिए, लेकिन खुद का नहीं। कहते हैं उसे शरीर में प्रवेशता करनी होती है। शरीर में प्रवेश करके आत्मा जहां रहती है ब्रुकुटी में, वो वही बाजू में आकर निवास करते हैं, और फिर जिनके अंदर प्रवेश करते हैं उनके मुख द्वारा ये ज्ञान सुनाना आरंभ करते हैं। इसीलिए उसे ईश्वरीय ज्ञान कहा जाता है, जिसके लिए उनके सामने कोई किताब नहीं होती है। वो स्वयं ही जैसे स्वयं भू है, ऐसे स्वयं ही ज्ञान के सागर है। जब वो ज्ञान देते हैं तो सारे शास्त्र, सारे जितने भी धर्म पुस्तक है, सबका ज्ञान निचोड़ उनकी वाणी द्वारा मिल जाता है हमें, और वो सभी धर्मों के लिए पर्याप्त है। भले फिर वो कोई भी धर्म का हो, बच्चा तो परमात्मा का ही है ना। इसलिए उन जो और जिस मुख से वो ज्ञान देते हैं उनको पता है क्या नाम देते हैं, क्योंकि जिसके अंदर वो प्रवेश करते हैं उस व्यक्ति को भी तो एक दूसरा जन्म मिला ना, उनका जन्म भी तो दिव्य जन्म कहलाएगा और उनको नाम परमात्मा से मिलता है क्योंकि उन्होंने हाजी का पाठ बजाया, जो परमात्मा का संदेश मिला उन्होंने हाजी कहकर उसी समय उसी सेकंड किया, एक प्रश्न तक नहीं पूछा, तभी उनको वरदान में ये नाम मिलता है प्रजापिता ब्रह्मा। आप सोचना, आपको पता है ब्रह्मा का जन्म कैसे हुआ? कोई हमारी तरह जन्म दिया है ब्रह्मा का? नहीं, उनका भी अलौकिक जन्म है, दिव्य जन्म है। तो उस शरीर में जब परमात्मा प्रविष्ट होते हैं उनको वरदानी नाम मिलता है प्रजापिता ब्रह्मा। आज से सारा संसार तुम्हें प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से जानेगा और तुम्हें प्रजापिता ब्रह्मा अर्थात रचयिता का रचना करने का कार्य मेरे द्वारा करना होगा, तुम ही निमित्त बनोगे उसके द्वारा, फिर हम सब की रचना होती है। हम सब ये दिव्य ज्ञान सुन रहे हैं, अपने कानों से अपनी आंखों से हम देखेंगे तब हमारे संकल्पों द्वारा या आंखों द्वारा या कानों द्वारा ये दिव्य जन्म हमें प्राप्त होता है। और हम सब शरीरधारी होने के नाते से अभी क्या कहलाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली, और प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हैं। ये ब्राह्मण जाति के अनुसार नहीं कहा जा रहा है, आत्मा की स्थिति के अनुसार कहा जा रहा है। आत्मा का दिव्य जन्म ब्राह्मण जन्म है और इसीलिए ब्राह्मणों की जाति में भी उनको जनोई पहनाई जाती है और कहा जाता है आज से आपका द्विजन्म है। पर वो तो नाम मात्र कहा गया ना जाति के लिए, हम सचमुच एक नया जन्म ईश्वरीय जन्म धारण करते हैं और ये ज्ञान से फिर से हम क्या करते हैं? आत्मिक परिवर्तन। आत्मिक परिवर्तन माना क्या? जो कलयुगी अवस्था हो गई तमो प्रधान, आत्मा को फिर से कैसा बनाना है? सतो प्रधान, क्योंकि हम जैसे परम धाम से आए थे हमको वैसे ही वापस लौटना है। और एक चक्र के अंत में वो सबसे सुंदर समय आता है जब हमको वापस अपने घर जाना है जहां से हम इस सृष्टि चक्र पर सुख और दुख का खेल खेल चुके हैं। अच्छा लगता है वापस परम धाम जाने का? जो सोच है, जो संकल्प है, वो अच्छी लगती है? आप सोचेंगे तो मृत्यु का भय भी भाग जाएगा। घर जाना है, घर जाने में कौन सा भय हो सकता है? बड़ी यात्रा करने के बाद भी व्यक्ति कहाँ वापस जाता है? अपने घर। ये हमारी सबसे बड़ी यात्रा है सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक। अब वापस कहाँ जाना है? परम धाम, अपने घर। और हमें कौन लेने आएगा? हमारे माता पिता। और कौन लेने आएगा? हमारे माता पिता ही तो जानते हैं ना घर का रास्ता। तो हम आत्माओं के माता पिता कौन है? शिव बाबा, वही हमको लेने के लिए आते हैं। और जब हम उनकी श्रीमत को सुनते हैं, फॉलो करते हैं, तो हम आत्मा अपने को तैयार कर देते हैं वापस परम धाम जाने के लिए। और केवल ये नहीं, हम उनके मददगार बनते हैं और सबको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने के लिए। ठीक है, तो ये जो समय है जब हम परमात्मा के साथ है इसी सृष्टि पर, भले कलयुगी वातावरण में, पर समय अब कहलाता है संगम युग। हम संगम पर आकर खड़े हो गए हैं। ये सबसे ऊंची स्थिति है इस सृष्टि चक्र में। भले दुनियावी रीति से सबसे खराब समय है, पर जब परमात्मा आते हैं सबसे ऊंचे से ऊंचा समय हो जाता है। अभी आप यहाँ से ये वृत्ति अपनी बदल के जाना, संकल्प बदल के जाना कि हम कलयुग में नहीं है, हम कहाँ है, संगम युग पर है, हमारा मिलन परम आत्मा से हो रहा है, हम अपने आत्मिक भाइयों से अब मिल रहे हैं और हम जल्दी ही अपने को तैयार करके परम धाम जाएंगे अपने माता पिता के साथ। तो अभी हम सृष्टि चक्र के उस संगम युग पर खड़े हैं, इसे कल्याणकारी युग कहा जाता है। बाबा के हाथ में हाथ है, हाथ में हाथ माना हमारी जो बुद्धि है ना वो हाथ है, और परमात्मा के जो डायरेक्शन है वो उनका हाथ है। हाथ में हाथ जब है तो हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। आपने वो ज्वेलर का अनुभव सुना ना, जिन्होंने स्टेज पे आके सुनाया कि मेरा पूरा लॉस जा रहा था, परिवार वाले मुझे कह रहे थे क्या कर रहे हो, मैंने कहा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है जो होगा अच्छा होगा, कभी नुकसान हो ही नहीं सकता परमात्मा के साथ। तो ये कल्याणकारी युग है, इसे पुरुषोत्तम युग कहा जाता है, और इसी के यादगार में हम पुरुषोत्तम मास मनाते हैं। सभी कितना दान पुण्य करते हैं, वास्तव में ये पुरुषोत्तम युग है जिसमें पुरुष अर्थात आत्मा फिर से उत्तम बन सकती है। ये ड्रामा का समय का आवाहन है कि आओ बच्चे फिर से पुरुषोत्तम बन जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो अब संगम पर क्या करना है, अपने स्वयं के टीचर पहले बनो। क्या करेंगे, अपने टीचर बनो, अपने को सिखाओ बताओ ये बार बार, दूसरा परमात्मा को टीचर बनाओ, और लास्ट में कौन टीचर बनेगा पता है, समय, लास्ट टीचर समय होगा। और हमारी टेस्ट कौन लेता है पता है, परीक्षा कौन लेगा, हम तो ऐसे मानते थे ना भगवान ही हमारी परीक्षा लेता रहता है, नहीं, हमारी परीक्षा लेगी माया कि हम कितना पास हो रहे हैं हमारी एग्जाम में, हमारे परिवर्तन में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, इसकी परीक्षा लेगी माया। माया क्या है, पांच विकार जिन्होंने हमें, हमने खूब खिलाया खूब पिलाया खूब पालना की, वो अब हमारी परीक्षा लेंगे। हमें बाबा को इस बात में धोखा नहीं देना है और विकारों से धोखा नहीं खाना है। बस जैसे आप समझ लो संगम युग माना, जैसे वो नहीं बड़ा रस्सा होता है पहाड़ों पे भी बांधते हैं और उसके ऊपर व्यक्ति बैलेंस से चलता है, अब इतनी ऊंचाई पर फिर भी नहीं गिरता है, कितनी अच्छी रीति से चलता है, संगम युग वही है। माया कोई ना कोई कारण से गिराना चाहेगी, पर हमको वो लकड़ी होती है हाथ में उसके, और वो बैलेंस से चलता रहता है और ध्यान एकदम सामने केंद्रित कर देता है। सामने क्या है, परमधाम, ठीक है, और ये लकड़ी क्या है, एक तरफ मैं आत्मा, एक तरफ मेरा परमात्मा पिता, ये दोनों का योग अगर बैलेंस होगा तो हम कभी भी माया के कारण गिर नहीं सकते हैं, और हम संगम युग के समय को बहुत सफल करते हुए, अनेक आत्माओं का कल्याण करते हुए हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, जो हमने कल्प पहले भी पहुंचा था और आगे कल्प में भी पहुंचेंगे। तो इस कल्प में क्यों नहीं पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए ये डायमंड एज है, हीरे तुल्य युग। सतयुग क्या है, सोने तुल्य, पर ये हीरे तुल्य है। बाबा हमको वापस एकदम हीरे तुल्य बनाने आए हैं, एकदम कोई भी दाग बिना का हीरा, बेदाग हीरा बनाने आए हैं, ठीक है। अभी हम सब मेडिटेशन में बैठेंगे 5 मिनट और सभी अपने बेदाग हीरे का स्वरूप अनुभव करेंगे। पता है ना क्या होता है, मेडिटेशन नाम लेते ही क्या होता है, लाइट बदल जाती है, शिव बाबा की लाइट ऑन हो जाती है, तुरंत हमारे मन को बुद्धि को निर्देशन मिलता है कि अभी कलयुग के वातावरण से उठकर परमधाम की ओर जाना है और अपने समर्थ संकल्पों में स्थित होना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सीधे सभी होकर बैठे, शरीर को भी रिस्पेक्ट देना है, यही तो साधन है हमें फिर से बेदाग हीरा बनाने का। इसलिए शरीर को भले हम भूलते हैं योग में, लेकिन उसको रिस्पेक्ट भी देते हैं। कुछ भी खा लेना, कुछ भी पी लेना, कहां भी कुछ भी कर लेना, ये शरीर को भी डिसरिस्पेक्ट देना है। तो अपने इस साधन, इस वस्त्र में अपने आप को देखे, भ्रुकुटी में चमकते सितारे की तरह, दो आंखों के पीछे, मस्तिष्क के आगे, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप के रूप में स्थित हूं। मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं। इस पांच तत्व के शरीर को जीवदान देती हूं, प्रकाशमय करती हूं। मैं आत्मा इस सृष्टि चक्र में एक एक्टर हूं, पाटधारी हूं, और मुझ आत्मा का स्वरूप अविनाशी है। इस सृष्टि के प्रकृति में वो ताकत नहीं जो मुझ आत्मा का नाश करे। अजर, अमर, अविनाशी शक्ति, अणु से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, एक अदृश्य शक्ति हूं। मूल स्वरूप में मैं आत्मा परमधाम निवासी हूं। सूर्य चांद तारागण से भी पार, अंतरिक्ष से भी पार, आवास की दुनिया से परे, कर्म क्षेत्र से बहुत बहुत दूर, मुक्त, लाल सोनेरी प्रकाश की अनंत तत्व में मुझ आत्मा का निज धाम है। जहां मुझ आत्मा को विश्राम करना होता है, कोई कर्म नहीं, कोई शरीर का बंधन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, बिल्कुल शांत, जैसे आकाश में सितारा चमकता है, ऐसे परमधाम में मैं आत्मा चमक रही हूं। अपने आत्मा बंधुओं के साथ हम सभी सृष्टि नाटक के एक्टर्स हैं, पर यहां कोई फर्क नहीं। आत्माएं कोई बड़ी छोटी नहीं, हमारा एक बड़ा परिवार, आत्मा आत्मा, भाई भाई, और हम सभी अपने स्वधर्म में अर्थात पवित्रता, और शांति में स्थित है। मैं भी एक शुद्ध शांत स्वरूप आत्मा हूं, यही मेरा वास्तविक धर्म है। मैं आनंदमय हूं, सुखमय हूं, शक्तिशाली हूं। स्वतंत्र हूं, बंधन मुक्त हूं। ओहो, मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा मीठे ते मीठे प्यारे ते प्यारे शिव बाबा के साथ हूं। मैं आत्मा अपने बाबा के प्रकाश में स्थित हूं। बाबा, मैंने रियलाइज किया आप ही मेरे माता पिता हो, आप ही मेरे सत शिक्षक सत गुरु हो, आप ही मेरे बंधु, आप ही मेरे सखा, आप ही मेरे सर्व संबंधी हो। बाबा, अभी कभी नहीं भूलूंगी कि मैं आपसे ही संबंधित हूं। सृष्टि केवल एक नाटक मंच है जहां मुझे कर्म करने जाना है, पर अब मुझे आपको नहीं भूलना है। अब मुझे आपकी श्रीमत पर कर्म करने हैं, आपको साथ में रखकर मुझे हर कर्म करना है, मुझे कर्म योगी बनना है, मुझे अपने विकर्मों का विनाश करना है, मुझे फिर से आपके पास आपके साथ आना है। मेरी यात्रा पूरी हो गई, आपने मुझे कितना सुंदर बताया। अब मुझे दुखों से भी कोई दुख नहीं, कोई समस्या ही नहीं आपके साथ। मैं हर सीन को देखने सीख रही हूं, कैसे आप परमधाम से साक्षी होकर देखते हैं, ऐसे मैं आपकी संतान मैं भी सीख रही हूं, कैसे साक्षी होकर के दृश्य को देखना है, समझना है, उसमें कल्याण देखना है। आपके साथ मैं आत्मा अब संगम युग निवासी हूं। मुझ आत्मा को सारे विश्व को आपका संदेश देना है कि चलो, घर वापस जाने का समय आ गया है। इस सृष्टि को परिवर्तन होने का समय आ गया है। एक विशाल परिवर्तन के लिए तैयार रहे, आत्मिक परिवर्तन करें। ओम शांति।